CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 18वां पाठ चुनौती हिमालय की पृष्ठ संख्या 140 से 146 तक।
पृष्ठ 140 चुनौती हिमालय की, लेखिका सुरेखा पणंदीकर। जोजीला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया,
शाप, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन शाप, रास्ता बहुत टेढ़ा है।
किशन ने कुली की बात काटी,
बहुत चढ़ाई है और शाप दूर भी है।
कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा।
8 मील शाप,
कुली ने जल्दी से उत्तर दिया।
बस तब तो जरूर चलेंगे।
जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजीला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए।
कौन कौन चलेगा हमारे साथ?
जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला,
शाप, मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी।
अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे।
पृष्ठ 141।
दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते? भाई, किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया।
बस 8 मील तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कुछ बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थीं सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई।
बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर।
पृष्ठ 142
पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था।
शाप लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा,
एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया।
वो तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है,
किशन बीच में बोल पड़ा। चलो भाई, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता, धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े।
शाप गिर गए,
किशन चीखा।
जवाहर,
भाई की पुकार वादियों में शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी में बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था।
जवाहर,
ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए।
हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना,
भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा।
भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं,
वो चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा, जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई।
घबराना मत जवाहर,
भाई की आवाज सुनाई दी।
मैं बिल्कुल ठीक हूं,
कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पैर कभी फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थीं, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले।
शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप, चोट तो नहीं आई,
एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं।
पृष्ठ 144
अभ्यास।
इस पृष्ठ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया गया है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। कहां क्या है? क, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहां है और तुम्हारा घर कहां है। ख, अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहां से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहां किन किन जरियों से पहुंचा जा सकता है। पृष्ठ 145 ग, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी सुनी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। वाद विवाद। एक, क, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी? ख, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहां कब रौनक होती है? घर, बाजार, स्कूल, खेत। दो, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। एक, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। दो, अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हों जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हों। अब इन दोनों कोलाजों को कक्षा में प्रदर्शित करो। तुम्हारी समझ से। एक, इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। दो, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? तीन, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? चार, क, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? ख, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? बोलते पहाड़। एक, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यहां निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढो। पृष्ठ 146 एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में सुना। यहाँ एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे सुनो और फिर प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है, नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं।
अभ्यास
क। इस पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए वर्णन में क्या अंतर है? इस पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए वर्णन में क्या अंतर है? ख। कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है, जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। शिमला के वर्णन में ऐसे और उदाहरण ढूंढो।
इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 18वां पाठ चुनौती हिमालय की यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।